कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
वो परमात्मा कौन है, उसका उत्तर आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म कहो पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो ब्रह्म, दो पुरुष, एक सर पुरुष, इसको सर ब्रह्म भी कह सकते हैं, एक अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं। और वो तीसरा 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया ना, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। तो यहां गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला जिसका नाश कभी ना हो। स्थान कहो, धाम कहो, लोक कहो, देश कहो, तो हम उसे सतलोक कहते हैं, उसको शाश्वत स्थान भी कह सकते हैं, शाश्वत परमधास, सनातन परमधाम भी कहते हैं। तो इसलिए कहा कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब का, उस रब का, उस राम का, उस अल्लाह का, उस गॉड का जो सबसे न्यारा है, उसकी भक्ति करने के लिए संकेत दिया गया है कि राम नाम रटते रहो। अब यहां जो राम नाम के लिए संकेत प्रभु दे रहे हैं, ईव समझ में आओगे आपको, आपका नहीं तो हम इनकम्प्लीट नॉलेज होते हैं, नीम हकीम गुरुओं के चक्कर में पड़के अभी तक हमारी बुद्धि यही भ्रम रही थी कि राम नाम, देखो कबीर जी भी तो कहते हैं राम का नाम जपो, वो भी तो इस दशरथ पुत्र को ही संकी और संकेत कर रहे हैं। ये अल्पज्ञता थी, ये लोक वेद था, अब हमें पता चला वो किस राम की तरफ संकेत कर रहे हैं, हमारे सभी संत ग्रंथ भी किसी और ही राम की तरफ, और उसके बारे में वो सदग्रंथ स्वयं नहीं जानते। परमेश्वर खुद कहते हैं वेद हमारा भेद है, कबीर जी कह रहे हैं, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक दो बार संकेत किया है, स्पष्ट किया है कि परमात्मा के बारे में कोई तो उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई न उत्पन्न होने वाला कहता है, यानी कोई साकार बताता है, कोई कहता मां से जन्म लेता है जैसे राम श्री कृष्ण आदि आए, कोई कहता है सद वो जन्म नहीं लेता है। कहते हैं ये यथार्थ ज्ञान भी कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो, यानी वेदों में क्लियर नहीं है कंसेप्ट, वो तत्वदर्शी संतों की तरफ ही संकेत किया कि उनसे, उनको उनसे सुनो, और अपने बारे में बताया है 40वें अध्याय के यजुर्वेद में 15वें श्लोक में कि वायु अनिलम बसमांतम इथम शरीरम, ओम कर्तो समर कलवे समर और कर्तुम समर, अपना नाम के अपना मंत्र बताया है कि मेरा सत ओम नाम का जप था, ओम मंत्र है, इसको काम करते करते सिमरन करो और विशेष कसक के साथ सिमरन करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के सिमरन करो। तो अंत समय में जब शरीर भस्म होगा, अंत होगा, तब तुम इस सत्र का जो लाभ तुम्हें मिलना है, इस सत्र का जितना तुझे मोक्ष मिलना है, उतने अमर हो जाओगे। फिर 70वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया मंत्र में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के इस मंत्र नंबर 17 में दो भगवान बताए। अब देखो पुण्यात्मा, कहते हैं चोर चुरावे तुम्बड़ी और वो गड्ढे पानी में और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। ये महर्षि दानंद जी थे जो जिनने आर्य समाज का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अपना सिद्धांत है कि वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा जिसे अनेक परमात्मा सिद्ध हों। इनके द्वारा अपने अनुभव की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समलास नंबर 7 के प्रथम में ही लिखा है। और वेदों का अनुवाद करते समय ये नहीं छुपा सके सच्चाई को और स्पष्ट करना पड़ा, क्योंकि वेदों में या गीता जी में विशेष दो भगवानों के विषय में ही, क्योंकि यही प्रोसेस के अंदर है हमारे दो भगवान हैं, ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। परब्रह्म ये साइड में है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये अलग है, इससे हमारा इतना लिंक नहीं है। हम इस ब्रह्म के जाल में फंसे हैं, हमने पूर्ण ब्रह्म में जाना है। बीच में इसके राज, इसके परब्रह्म के जो इस लोकों में से हमने जाना है, इसलिए इसका इतना ज्ञान और इसकी भक्ति, इसकी कमाई मजदूरी ये हमने करनी पड़ेगी। अब देखना, ये यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित। अब इसको महर्षि सरस्वती इसलिए कहना पड़ेगा कि पक्की गैस का नाम ना तो ये महर्षि था, इसको तो कह खा का भी ज्ञान नहीं था किसी क्षेत्र का, ना वेदों का, अध्यात्म ज्ञान जीरो, समाज ज्ञान जीरो। इसका आप दिखा दूंगा इसके सत्यार्थ प्रकाश में, जो इनका अनुभव सारे जीवन का जो इसका अनुभव था उसमें वो लिख गया। अब जैसे हमारे भगवान कबीर जी, उन्हीं से परिचित गरीबदास जी, उन्हीं से परिचित नानक साहब जी, उन्हीं से परिचित दादू साहब जी, उन्होंने जो भी अनुभव किया अपने जीवन का, उन्होंने भी अपनी अमृतवाणी में अपने वो लिख कर चले गए। और आज वो वेदों और गीता सबसे मिल रहा है, उससे आगे का जो ज्ञान परमात्मा ने बताया उनसे मिल रहा है, ऐसे ही उन्होंने उतना प्राप्त किया था। अब उन वाणी ने पढ़ लिया चाहे उनके, ये सोच लें कि उनको इतना ज्ञान था, ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो और ये सोच लो कि दयानंद ने कितना ज्ञान था, कति क्लियर हो जाएगा। तो अब वेद जो है ये ब्रह्म द्वारा दिए गए, अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद अपने अनुभव अनुसार करने की चेष्टा भी की, लेकिन सच्चाई फिर भी नहीं छुप सकी। अब देखिए यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दान सरस्वती कृत यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये है प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ये इनका इतना दूरभाष है। और ये किसके द्वारा अनुवादित है, यजुर्वेद आर्य भाषा भाषे यानी हिंदी भाषा में अनुवादित संपूर्ण 40 अध्याय किसने किए हैं, महर्षि दान सरस्वती कृत इनके द्वारा किया हुआ अनुवाद किया गया। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब इसके लास्ट में है ये 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय है ये देखिएगा। पहले तो आपको ये क्लियर करते हैं कि ये है चतुवारिशो अध्याय माने 40वां, और इसमें ये 10वां श्लोक है इसका, ये 10वां मंत्र। इसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये अनुवाद नहीं कर पाए, इनको ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत अवश्य जानते थे महर्षि दानंद जी, इनको अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था, फिर भी जो का तू जैसा भी अड़ंगा अनुवाद किया फिर भी सच्चाई ऊपर रही। देखिएगा हे मनुष्यो, ये है 40वें अध्याय का 10वां मंत्र है। हे मनुष्यो, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों, धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, धीर माने जिनका ज्ञान टिकाऊ हो, उसमें कोई डगमग ना कर सके, धीराणाम यानी मेधावी विद्वानों से अर्थात तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता किसी अन्य विद्वानों की तरफ यानी और तत्वदर्शी संतों की तरफ संकेत कर रहा है। वे लोग हमारे प्रति व्याख्यानुपूर्वक कहते हैं यानी विस्तार से बताते हैं। वे लोग, ये देखो संभवात, यहां देखिएगा संभवात मान लिखता संयोग जन्य कार्य से, संभवात माने होता है उत्पन्न और असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो कहते हैं अन्य माने दूसरे, इसका सिद्ध इनके द्वारा पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि हमने ये देखना है कि वेद ज्ञान दाता किसी तत्वदर्शी संतों की तरफ संकेत कर रहा है। हे मनुष्यो, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों यानी तत्वदर्शी संतों से वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति यानी हमारे को व्याख्यानुपूर्वक कहते हैं, विस्तार से बताते हैं, संभावत संयोग जन कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य का फल आहु कहते हैं, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और आहु कहते हैं। इति, इस बात को भी सुनो, तुम भी सुनो। क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि कोई तो परमात्मा को कहता है कि वो उत्पन्न नहीं होता, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभावत माने उत्पन्न होना, असंभवात और संभवात। कोई तो परमात्मा को कहता है जन्म नहीं लेता, कोई कहता है, दूसरे कहते हैं जन्म लेता है। कहते इस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी संतों से सुनो, वो बताओगे। और फिर इसी के 40वें अध्याय के 13वें मंत्र में फिर सेकंड किया है, दोबारा फिर कहा है, ये चतुर्थ अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का, यजुर्वेद भाषा भाषे 44वां अध्याय इसके 13वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जो विद्वान लोग यानी तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्या अनुपूर्वक कहते हैं, पूर्वक विद्या का अन्य ही कार्य फल आहु कहते हैं, अविद्या पूर्व मंत्र से प्रतिपादन के अविद्या का अन्य ही कहते हैं, इस प्रकार धीराणाम आत्मज्ञानी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते थे, ऐसा जानो। अब ये तो इसने जो भी गोलमोल किया है, हमने अपना मतलब सिद्ध करना है कि वेदों में संकेत किया हुआ है कि कंप्लीट ज्ञान नहीं है और शेष ज्ञान किसी अन्य तत्वदर्शी संतों से सुनने को ही कहा गया है। तो परमात्मा स्वयं कहते थे कि वेद हमारा भेद है और हम ना वेदन के माही, यानी मेरा कंप्लीट ज्ञान वेदों में नहीं, और जौन वेद से और जिस वेद से मैं मिलूं वो ये वेद जानते ना ही, वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं कि वो परमात्मा पूर्ण है, वो सबका मालिक है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति कीजिए, लेकिन उन वेदों में मेरे पाने की विधि प्रॉपर नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं, एक ओम, ओम तो सीधा ब्रह्म का है, ये तो क्लियर रुक के मार रखे इसने, और तत और सत ये क्लियर नहीं कर रखे, नहीं तो अगर यही मंत्र फाइनल होता तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथे जाएगे 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को तो तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, इसलिए ये मंत्र कंप्लीट नहीं है, ये तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा और वो तीन भगवानों का है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु आपको स्पष्ट किए, यही इसी प्रकार इन तीनों के ये तीन मंत्र हैं, ओम मंत्र सर्वपुरुष यानी सर्वब्रह्म का, और ये तत् ये गुप्त है संकेती के दास बताओगा, ये परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का, अक्षर ब्रह्म का, और सत ये भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। तो तीनों के तीन मंत्र हैं, ये गुप्त है, इसलिए परमात्मा कहता है वेद हमारा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। जिस मंत्र से जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो इन वेदों में उसका स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखो ये वही 44वां अध्याय चल रहा है, इसमें दो भगवान नैरे नैरे बताए, क्योंकि ये परिभाषा प्रभु की आपको बताई जा रही है। 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये 15वें श्लोक में मंत्र में क्या लिखा है 40वें अध्याय के, वायु अनिलम अमृतम इथम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मूल्य कर्तव्य जानकर अपना कर्तव्य समझकर मनुष्य जीवन का, कि मनुष्य जीवन में केवल भगवान भक्ति ही उद्देश्य मूल है, इसलिए इसका श्रवण अवश्य करो। अब स्वामी जी का अनुवाद देखियो, अत्रा गजब हो, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम। अब देखियो पुनात्मा बालक नहीं हो, मानव समाज बहुत विद्वान हो चुका है, कंप्यूटर ताई बना लिए, लेकिन अध्यात्मिक ज्ञान की तरफ डाइवर्ट हुआ नहीं है माइंड। जिस अध्यात्मिक मार्ग की तरफ आप इसी तरह डाइवर्ट होते ही तुरंत समझ जाओगे, बहुत अरिस की आवश्यकता है, ये कंप्यूटर तो ये रह जाएंगे, भक्ति साथ चलेगी। यहां देखो स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं 40वें अध्याय यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र का, हे कर्तो माने कर्म करने वाले जीव, ओम कर्तो समर स्पष्ट किया है, इसमें बालक भी अनुवाद कर दे, थोड़ी सी हिंदी जानता हो, ओम मंत्र का जाप काम करते करते समर कर, यू कह कर्म करने वाले जीव तू श्री छूटते समय ओम, इस नाम वाची ईश्वर को समर समण कर। ओम का समर्थ नहीं बताया स्वामी जी ने, जबकि स्पष्ट करता है ओम करतो समर किल्वे समर कर्तुम समर। यहां अनुवाद करते समय भी ये विचलित है, ढंग से नहीं कर पा रहा है, श्री छूटते समय ओम आगे लिखना था, इस ओम नाम का स्मरण कर। ओम नहीं लिखा, ओम है ब्रैकेट में, क्योंकि संस्कृत में वाली चीज जो मूल संस्कृत है उसको ब्रैकेट में लिया स्वामी जी ने, और अनुवाद आगे अपनी अलग लिखा है, तो ब्रैकेट में ओम शब्द है, इस ओम का अर्थ यहां लिखना था ओम। इसने लिख दिया कि जिस ईश्वर का ओम नाम है उस ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम, इसका सीधा अर्थ ब्रेन के अनुवाद का। आप फिर देखें, हे कर्म करतो माने कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ सीधा है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये सूक्ष्म वेद में ये ज्ञान है, और वही वेद सेकंड कर रहे हैं इसको, लेकिन अनुवाद करता गलत है, इन्होंने नहीं करना आया। अब परमात्मा कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं, ये वेद और कतेब झूठी नहीं है, लेकिन इनको जो समझ नहीं सके वो नालायक आदमी थे, वो झूठे थे, उन्होंने ऊट पटांग ज्ञान समाज में ठोक दिया। अब देखो, एक कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम कारसिस ने किया है, इस नाम वाची ईश्वर को समर माने समण कर, इतने सेंटेंस का इसने इतना कुछ अड़ंगा किया है, इसका सीधा अर्थ है कि ओम नाम का जाप कर तो काम करते करते श्रवण कर, किल्बे यानी किलबलाट के साथ, सिंपल सी भाषा है या कोई विशेष नहीं है, जैसे आदमी मरते हुए याद कराया करे, विशेष दुख में याद कराया करे, भगवान ने कहते न्यू याद कर, रंकार धुन से याद कर। रंकार धुन क्या है, एक बार हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हो गया, हाथी गया था पानी पीन, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ दिया, वो अंदर ने खींचा हाथी बाहर ने खींच लिया, मगरमच्छ भी पूरा बेगन हो है तो बहुत बड़ा होता है, तो हाथी भी बहुत तगड़ा था। कहते हैं 1000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, अपनी अपनी ताकत आजमाते रहे। लास्ट समय में हाथी कमजोर हो गया क्योंकि आसपास का चारा उसका खत्म हो गया और मगरमच्छ ने वो अंदर खींचना शुरू कर दिया, खींच लेगा। जब सूंड बाहर रह गया कति एक सूत यानी एक चावल के दाने के बराबर थिकनेस बाहर रह गया उसकी पानी में डूबणता है, क्योंकि हाथी के सूंड में ही श्वास होता, नाक होता है वहीं से श्वास आता है। जब उसने देख लिया तेरी ताकत काम नहीं करती, तब उसने आधा याद किया था, राम भी पूरा नहीं कह पाया था, यानी मरते हुए जो मालिक ने याद किया जाता वो कष्ट उसको किल्बे बोलते हैं। कहते ऐसे याद कर भगवान ने इमरेल बड़ा हा मंत्र की नो 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 देखियो ना नो को तुनो बता कि रेल छूटे है आराम से करे बैठ के चाहे थोड़ा कर ले पर करे प्यार ते। 108 मंत्र बताए आपको करने के लिए, इसने सारे दिन में कर लिए, चाहे 6 बार में पार्ट कर लिए इसके है, मतलब 10 पेक में कर ले, 10 फेर कर ले, कर ले कति जचा के फिर इस मन ने छोड़ दे ले, खाले धक्के कितकी सोचेगा तुम, फिर यू शरमाण लग जाएगा थोड़े दिन में, अपने आप सेट होने लग जाएगा। तो ऐसे कसक के साथ करे इस मंत्र को, ऐसे इसको ररंकार धुन कहते हैं। हर ये एक पंथ हरा दास स्वामी वो नो कह ररंकार ओंकार नो जब पे जाओ वैसे ओंकार ओंकार सो हम सतनाम है, ये ज्योत स्वरूपी ज्योत निरंजन, ये कोई बात है, ये तो नाड़िया की बात है, यानी ज्ञान को ना समझ कर वस्तु कहां ढूंढे कहां और किस विद लग गए हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। एक साहूकार मर गया और उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि बेटा मैंने वही में सारा हिसाब किताब लिख रखा है, तुम उस वही पढ़ लियो। उन्होंने वही पढ़ी, उसमें लिखा था कि फागण उतरते की, या जैसा भी कोई महीना लिखा था, फागण उतरते की 14 चांदनी 14 दिन के रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने सोना इतना नगद रुपये इतनी टूम यानी गहने वहां दाब रखे। अब पिता की मृत्यु के बाद क्रियाक्रम से फारिग होकर उन्होंने भाई देश वाली दुबई में लिखा पा गया, चलो भाई कोई बात ना। वो लाला जी ने अपने आंगन में मंदिर बनवा रखा था, बड़ का बच्चा ने वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया, उस गुम्बज में कुछ नहीं पाया। तो कोसे अपने पिता को, पिताजी तो झूठ बोल गए, पैसे की तो उर्दा भी गई, हमने तो नाश हो गया हमारा, बताए क्यों कर ढूंढा। तो उनके पिताजी का एक मित्र था, वो बहुत दुखी हुए, उसके पास पहुंचे कि ताऊ जी हमारे पिताजी तो झूठ गलत जगह बता गए हमारे ताई, और हमारा तो नाश हो गया, घना धन है उसमें। तो उसके फादर के मित्र ने फ्रेंड ने देखा वो पढ़ कबला, चल थरी वही देखांगे कित लिख रखा उस बही में, उस नोटबुक में देखा आके। वो बुद्धिमान व्यक्ति था, कहने लगा बेटा इस गुम्बद ने फिर बना दो वैसा ही जैसा था, मैं बताऊंगा फिर तुम्हें। और वो फागण की 14 चतुर्दशी के चांदनी 14 के थोड़े दिन रह रहे थे, ने बोला मैं आऊंगा उस दिन और रात ने थारा धन ढूंढांगे। वो मंदिर बनवा दिया गुम्बज वैसा ही बनवा दिया था। रात को उस फागुन उतरते की यानी चांदनी 14 को रात के 12 बजे जहां गुम्बज की छा जाती थी आंगन में, गुम्बज की मंदिर के गुम्बज की जहां छाया जाती थी वहां उस उनके फादर के फ्रेंड ने निशान कला जा बेटा डा खोदो, वहां खोदा जो का तो पा गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये वेद और गीता जी सांकेतिक शब्द हैं, परमात्मा का भी जो ग्रंथ है कबीर जी का सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कबीर सागर, ये सांकेतिक शब्द हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार ज्ञान मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। अब इस दास को बता दिया वो वही खोल कर दिखा दी, यो कहां रखा है धन ढूंढ ले भाई, ये है वास्तविक। तो यहां वो धन नो का नो पा गया। तो कहते हैं वस्तु कहां और खोजे कहां, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले लिया साथ। तो भेदी यानी तत्वदर्शी संत से ही सदग्रंथ समझ में आ सकते हैं। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अब आज तक के ब्राह्मण ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब अज्ञानी थे, वेदों से अपरिचित थे। और इस कलियुगी महर्षि दानंद की तब के गुजड़ी थी, कोई वेदों को समझ सके। अब यहां एक बात और अड़गी, प्रथम बार कोई सुन रहा होगा, भक्त देख रहा होगा इस परमात्मा की महिमा के ज्ञान को, सुन रहा होगा टीवी पे, तो बिदक जाएगा। नो कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, इस रामपाल को ही ज्ञान है, यानी नो दी देगा डेगा और भगवान से दूर हो जाएगा। दास चाहता है रामपाल को ज्ञान नहीं है, रामपाल तो एक स्पीकर समझ लो या टेप रिकॉर्डर समझ लो, परमात्मा के सदग्रंथों को पढ़कर आपको सुना और प्रत्यक्ष दिखा रहा है। ज्ञान तो भगवान का है, उसी ने हमें दिया था, हम गुम्मज फोड़ दिया हमने, वो यथा स्थान नहीं खोजा। और गुम्मज में कि मैं पाया को नहीं, क्योंकि वहां था ही नहीं, वो सांकेतिक शब्द है। ये तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान में ही वो आपको मिल सकेगा और कहीं नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, ना दुर्गा को पूर्ण ज्ञान था, और न ही सतयुग के ब्राह्मणों को या ऋषियों को ज्ञान था। तो आज वाले ब्राह्मण ऋषि कहां से ज्ञान लाओगे, ना वो वेद समझ सके। परमात्मा की एक वाणी को क्लियर करने के लिए कि गुरु बिन का वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी, ये सार नहीं समझ सके भगवान इन वेदों का। अनुवाद तक कोई कर दे, उठपटंग संस्कृत कार कुछ भी कर सकते हैं, जिसको थोड़ी बहुत आती है, लेकिन भावार्थ महत्व रखता है। ये देखिए श्रीमद् भागवत यानी दुर्गा पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये दुर्गा है राक्षसों को मार रही है, ये इसी की महिमा है इसमें। ये दुर्गा पुराण कहो चाहे देवी पुराण कहो, ये किसके संपादक कौन है, अनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आपको 28 पृष्ठ पे दिखाते हैं। अपुण्यात्माओं आम रोटी रोज वही खाते हैं, और जिस दिन उन्हीं रोटी में सुबह खाली शाम में भूख नहीं लगी तो आप अस्वस्थ हो चुके हो। जब तक आप स्वस्थ हो रुचि पूरी बनेगी, भूख प्रॉपर लगेगी। ऐसे ही इस परमेश्वर के ज्ञान में 100 बार भी सुनोगे, 100 बार ही आपको अच्छा लगना चाहिए, तो आपका भक्ति स्वस्थ चल रहा है, आप ठीक चल रहे हो। अन्यथा आपको लगता है तो कई बार सुन लिया, पहले भी सुना था, तो आप में कोई कर्म की मार फिर जोर दे रही है। उसका इलाज भी यह है कि ना चाहते हुए इसी कड़वी टेबलेट ने खाते रहना, यह ज्ञान सुनना ही सुनना पड़ेगा, और इसी तक फिर देखना सेट हो जाता, 2 मिनट के बाद रुचि हो जाती है। अब देखिएगा ये पहला स्कंद और पृष्ठ 28 पे यहां देखिएगा नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, ये उनकी शोभा बता रखी है, वो किसे हैं भगवान, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। अब क्या कह रहा नारद जी, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता के आराधना की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने के ज्ञान दिया बताया, ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि जो आगे छोड़ो, उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से सहार कार्य भी होना संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। अब देखो कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे कि समर्थ नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश। सुवर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने का उस रात ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे और तोड़ पाड़ दिया, मुझे सब प्रकार से, ये 29 पृष्ठ पे है पहले सकंद का, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। मैं दुर्गा के अधीन हूं और उन्हीं भगवती शक्ति का, दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं यानी मैं उससे की पूजा करता हूं। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से, दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे ऊपर कोई भगवान नहीं, ये फाइनल गॉड है मेरा। अब दुर्गा क्या कहती है? वो कहती है ब्रह्म की साधना करो, क्योंकि इन ज्ञान, अब जैसे मां के पेट में प्राणी को पूरा ज्ञान होता है और बाहर आते भूल जाता है, ऐसे ही दुर्गा भी ऊट पटांग, क्योंकि एक सतलोक से निकलने के बाद इनकी ऐसी ही स्थिति हो गई है, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं रहा। अब दुर्गा जो अपने वचनों में कदे परब्रह्म कह रही है, कदे पारब्रह्म बोल रही है, परम अक्षर, फिर अक्षर ब्रह्म की महिमा गा रही है और आखिर में कहती है वो ब्रह्म है और उसका ओम नाम है, उसका जाप करो और वो ब्रह्म लोक में रहता है बस, और किसी की पूजा मत करो। तो इससे विष्णु जी के अज्ञान की पोल खुल गई। वो कहता मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता, दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो और सब पूजाएं छोड़ दो, मेरी भी छोड़ दो। आगे देखो, इसी दुर्गा पुराण में 562 पृष्ठ पे ये है 7वां स्कंद, और 562 पृष्ठ देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म का स्वरूप बताया उसने, कैसा है, क्या स्थिति है। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर, ये तो अपने बारे में कह रही है, यहां कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यहां तो कहती है मेरी साधना कर तो ऐसे कर, आगे लिखा उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहात्र नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लून लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब देखो यह अक्षर ब्रह्म कहा है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, यह वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य को तुम वेदन करो, लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका के मंत्र बताओ है फिर आखिर में, ओम परमण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ब्रह्म आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे, यानी अपनी पूजा को भी नकारा करती है और किसी की पूजा नहीं, केवल ब्रह्म पूजा करे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होने का अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। आगे ना ब्रह्म के ऊपर, ओम नाम है ब्रह्म, उसका जाप है और वो कहां रहता है, वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है। अच्छा ये तो अब ये परमात्मा का एक सेंटेंस, वेद कतेव झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यो थो था बुझ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना, इससे सिद्ध है कि ना ब्रह्मा जी को गुरु मिला, ना विष्णु जी को मिला, ना शिव जी को मिला, ऋषि महर्षियों को, इनको तो मिलना ही कहां था। यानी गुरु नहीं मिला जो वेदों का निर्णय कर सके, जो परमात्मा आए थे इन्होंने उनकी बात मानी नहीं, काल प्रेरणा से स्वयं ही विद्वान पाके रहे, सारे समाज का नाश कर दिया इन नकली ऋषियों ने और महर्षियों ने। अब ये तो ज्ञान हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश का और दुर्गा का, कितना ज्ञान था इनको, वेदों से ये परिचित नहीं थी दुर्गा, क्योंकि दुर्गा ब्रह्म तक की साधना बताती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी पुनर्वर्ती में है, वहां भी गए हुए स्थाई स्थान नहीं प्राप्त कर सकते, वो अविनाशी नहीं हो सकते, उनका पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु के रहट से ये नहीं निकल सकते। अब इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो इनको मिला नहीं, वो गुरु नहीं मिला, यही अभी वेदों में आपको प्रमाण दिया जा रहा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में इस मंत्र में स्पष्ट कहा है कि वेद ज्ञानदाता कहता है कि यथार्थ ज्ञान तूने जानना है तो तत्वदर्शी संतों से सुनो, वो बताओगे ठीक ठाक वास्तविकता। अब सतयुग के ऋषियों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में क्या सोचती वो आपको बताते हैं 414 पृष्ठ पे इसी देवी पुराण के, ये देखिएगा ये छठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 414 पे ये है संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। ये राइटर ऑफ पुराण वेद एंड गीता व्यास जी ये सब का लेखक है और ये क्या बोल रहा है देखना। व्यास जी बोले राजन इस यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वेद के पूर्ण विद्वान थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे, ये थे वेद के विद्वान थरा गजे भैया, और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अरे कलयुग के ब्राह्मणा क्या फिर कवा के इन ऋषियों की तो कहना क्या है, इस देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस होते थे वो कलयुग के ब्राह्मण है। ये दास नहीं कह रहा, ये देवी पुराण बता रही है। ये देखिएगा इसी में छठा स्कंद वही 414 पृष्ठ, ये छठा स्कंद है, यही 414 पृष्ठ है जो अभी आपने पढ़ा। इसी में यह देखो, धर्म की यह स्थिति त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। सतयुग से चल रहा युग्यान राजन, इन प्राचीन युगों में पहले वाले युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। दास नहीं कह रहा, ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अपने आत्मा परमात्मा का वो एक ही शब्द, एक ही श्लोक, भाई गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी टोल इकट्ठा हो रहा था सारा। अब ब्रह्म खुद कहता गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, चौथे जाएगी 34वें श्लोक में। तो इन सभी ने गुरु नहीं मिला, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिसलिए ये सब अज्ञानी थे। अब देखो फिर यजुर्वेद देखते हम, ये यजुर्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। आज परिभाषा प्रभु की के ऊपर विशेष विवरण है हमारा, तो इन्होंने क्या ये इसलिए क्लियर कर रहे हैं सारा कि परमात्मा ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये तीन परमात्मा से परिभाषा प्रभु कंप्लीट होती है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन मरमदा मैदान नई दिल्ली। अनुवादक है महर्षि दानंद, यजुर्वेद भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत पूरे 40 अध्याय, और ये कहां से छपी है वही प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम ये पढ़ते आ रहे हैं यजुर्वेद भाषा भाष्य अध्याय नंबर 4400 यानी 40वां, ये 15वां पढ़ रहे थे। इससे इन अज्ञानियों की झलक आई थी, इसलिए ये प्रसंग बीच में सुनाना पड़ा। ये देखिएगा इसमें सिद्ध अर्थ है, वायु अनिलम अमृतम अथम इदम अथ इदम बसमांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, काम करते करते स्मरण करो, किलवे यानी कसक के साथ स्मरण करो, कति जैसे आदमी घनी यानी मरते हुए याद करता है, ररंकार ररंकार इसको बोलते हैं। दाई रै बोल रहा था, इतने में मालिक ने उसकी मदद की आकर के डूबते हुए। तो ऐसे आप भक्ति करोगे तो थोड़ा मंत्र कर लेना, कति कसक के साथ करना, वो सीधा जमा होता आपका जा करके। अब देखो फिर है कर्तुम समर, मूल कर्तव्य समझ कर, मुख्य कारण समझ कर उसका स्मरण करो। फिर बसमान वायु अनिलम अमृतम अथ इदम, इसके पश्चात आपका जो वायु माने ये प्राण, ये जीव श्वास निकलेगा जो अंत होगा तेरे शरीर का, ये अमरतम यानी इतना अमर हो जाएगा, जैसे ओम नाम के जाप करने वाले विधिवत विकारों रहित होकर के और पूर्ण संत से उस अतर के गुरु से नाम लेकर के, तो ये कहां चले जाते हैं ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में कब तक रहते हैं, 36,000 बार इस उत्पत्ति पर लय हो लेगी यानी ब्रह्मा की मृत्यु तक, ब्रह्मा की आयु तक ये वहां रहेंगे, उसके बाद फिर 84,00,000 योनियों में आ जाएंगे। यानी इतना इसलिए इसकी इनको भी अमर बता दिया, इतने वर्षों तक वहां रह भी जाएगा तो फिर भी मृत्यु, फिर भी जन्म मृत्यु। तो फिर आगे क्या बताया है, इसने क्या अनुवाद किया है वेद ज्ञानहीन प्राणी ने महर्षि दानंद ने, हे कर्म करते अर्थ है कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम का नहीं, ये ओम ब्रैकेट में संस्कृत है, ओम इस नाम वाची ईश्वर को, जिस ईश्वर का ओम नाम है उस ईश्वर का स्मरण कर, नोट ओम का। किल्पे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का, किल्पे माने अर्थ क्या है, स्मरण कर। कर्तम अपने किए का स्मरण कर। इस संस्कार का वायु धनज्यादि रूप, वायु अनिलम कारण रूप, वायु को कारण रूप, वायु अविनाशी कारण को धारण करता, इसके अंतर यह शरीर नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर, अंत में भस्म होने वाला होता है सा जानो। बता इसका कोई सर पैर बिना, इसका क्या निष्कर्ष निकाला, इतना बड़ा व्याख्या कर दी। आगे देखो 70वें मंत्र में 40वें अध्याय के में दो परमात्मा सिद्ध किए। दास ये चाहता है कि हम परिभाषा प्रभु की अकॉर्डिंग टू द शास्त्र समझें और वही फाइनल है, बाकी दंत कथा कोई कुछ कहता रहो उससे हमने कुछ लेना देना नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती, ना कोई कार्य सिद्ध होता, ना सुख होता। इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य में, यानी कौन से कार्य करने हैं, कौन से त्यागने चाहिए भक्ति मार्ग में, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथों को फाइनल मानकर फिर चलना, जो संत शास्त्र अनुसार साधना बताता है उसी संत की खोज कर और उसी के कार्य बताए अनुसार साधना करो, तब सफल होगी। तो यहां के हमने सदग्रंथों से ही अपने आप को स्थिर करना है, अपने ज्ञान को दृढ़ करना है, तभी हम आगे चल पाएंगे। अब 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद 40वां अध्याय, अब इसमें 17वां मंत्र आप पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, हरमेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम। ये असौ आदित्य पुरुष है, स असौ अहम ओम खम ब्रह्म। अब इसका अनुवाद क्या लिखा है स्वामी जी ने, हे मनुष्यो जिस ज्योति स्वरूप हिरमेन ज्योति स्वरूप पात्रेण रक्षक मुद से सत्य अविनाशी यथार्थ कारण के अपहितम आच्छादित मुखम, मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह असौ माने वह आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में वो पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वो तो ऊपर गुप्त है, जो अविनाशी भगवान है वो तो ऊपर गुप्त है। और अहम, अब देखो अहम संस्कृत देखो, अहम मैं खम आकाश के तुल व्यापक, ये लिखा है ओम खम ब्रह्म। वो ब्रह्म जो है, खम माने ब्रह्मलोक में स्वर्ग में रहता है और उसका ओम नाम है, ये सीधा इसका अर्थ है। खम माने स्वर्ग भी होता है आकाश भी होता है, दो अर्थ है। दिव्य आकाश लिखा है ना, दिव्य आकाश में स्थित है देवी दुर्गा बोल रही है, तो खम माने वो दिव्य आकाश है और ब्रह्म माने ब्रह्म, ओम उसका ओम मंत्र है। इसका क्या अर्थ है, वह परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है, यहां है लिखना था, उड़ जा रहा है। और वेद ज्ञान दाता कहता अहम, यहां से अहम ओम ब्रह्म क्रम खम खम ब्रह्म, अहम माने मैं, खम माने आकाश के तुल्य व्यापक, आकाश दिव्य आकाश में ब्रह्म सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। अब सीधा लिखा मैं ब्रह्म हूं, इससे कि देख ले मैं आकाश में रहता हूं उस खम में और मैं ब्रह्म सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। यार ने लिख दे मैं ब्रह्म हूं और सबका रक्षक जो मैं उसका, ये ओम अड़े लिख दिया, ओम सबका रक्षक जो मैं हूं ओम, ऐसा नाम जानो। पढ़ो जो अब यहां इसका अर्थ, हाँ ये दास ये कहना चाहता था कि दो परमात्मा इस यजुर्वेद भी सिद्ध कर रहा है, दो भगवान दो प्रभु, एक तो ये ब्रह्म है वो ये, और एक पूर्ण परमात्मा, एक परमात्मा एक पूर्ण परमात्मा, दो भगवान हो गए। तो हम ये ऐसे परिभाषा प्रभु की जाननी है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। हमने जैसे प्रसंग चला था कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। और यही वेद बता रहे हैं कि अंतिम श्वास तक जब शरीर छूटे तब तक मालिक का नाम जपो। पर कौन से राम का? अगर ब्रह्म राम का जाप करना है तो ओम है, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है ओम तत्सत। ये गुप्त है, दो सांकेतिक शब्द है, ये दास ही बता सकेगा और ना को बता सकता, और बताओगा तो अधिकारी नहीं, वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता, वो दोनों दोषी हैं। तो इसलिए इस दास से ही उपदेश लेकर आपको इस उस राम की भजन करो, उस रब का जो दाता है कुल सब का, उस राम की भक्ति करके आपका छुटकारा होगा। और कहते ये बात कैन सुन की नहीं भाई, कर पालन की है। बोलो सतगुरु देव। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर देव कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, ये वही परमेश्वर हैं जो सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में अपने सत्यलोक से चलकर यहां लीला करने के लिए आते हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इनका नाम कबीर देव है, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु। ये प्रत्येक युग में रूपांतर करते हैं, नामांतर भी कर लेते हैं, लीला एक जैसी ही करते हैं। एक शिशु रूप धारण करके कहीं स्वच्छ स्थान पर, कमल के फूल पर प्रत्येक युग में विराजमान होते हैं। और इसी प्रकार जैसे कलयुग में आपने परमेश्वर के बारे में सुना है कि नीरु और नीमा नाम के दो जुलाहे दंपति उनको उठा ले गए थे, बच्चे की तरह परवरिश की, परमात्मा छोटी ही आयु से अपने सत्य ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे, ऐसा ही ये प्रत्येक युग में करते हैं। और कलयुग में ये लगभग 120 वर्ष तक धरातल पर रहे, उसके पश्चात से शरीर चले गए। ये वो परमात्मा है जो स्वयंभू हैं, ये परिभू हैं, ये कबीर मनीषी, इनका शरीर सुक्रम अकायम असनाविरम। इनका शरीर माता पिता के योग से बने शुक्र का नहीं होता, ये स्वयंभू हैं, तेज पुंज का शरीर होता है। परमात्मा के शरीर में नाड़ियों का तंत्र नहीं होता, इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी कबीर मनीषी यानी कबीर विद्वान, जिसकी इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को है, वो कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर देव है। इनका शरीर अकायम, शुक्रम अकायम, पांच तत्वों से रहित इनका शरीर है, असनाविरम है, नाड़ियां नहीं है इसके शरीर में परमात्मा के। वो प्रिभु है सबसे पहला, सबसे पहले प्रगट, प्रिभु माने प्रथम प्रगट, और स्वयंभू माने स्वयं ही, सर्वस्वा होते हैं ये, स्वयं ही प्रगट होते हैं, किसी मां से जन्म नहीं लेते। जैसे इस पृथ्वी पर आते हैं तो भी ये स्वयंभू होते हैं, सतलोक में, अमरलोक में, अलख लोक में, अगम लोक में, अनामी लोक में, कैलोक आदि में, ये वही परमात्मा है जो स्वयंभू है, किसी मां से जन्म नहीं लेते, ये सबके पिता है। परमात्मा का पिता कोई नहीं होता। उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, आप इस लोक के रहने वाले नहीं हो, आप तो यहां सजा काट रहे हो, और आपने इस कैद को, इस जेल को अपना मूल ठिकाना मान लिया और आप जी ने इतना ही मान लिया कि यहां ऐसे ही संतानों उत्पत्ति की जाती है, इनकी परवरिश करनी चाहिए और इनका शादी विवाह करके फिर हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमारी मृत्यु हो या जीवन रहे, कोई हमें आगे की सोच चिंता नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जो कार्य आप जी ने मनुष्य जीवन से प्रारंभ करना था, जो करना चाहिए था, उसका तो स्टार्ट भी नहीं किया आपने, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। अब जैसे दो चार बूढ़े इकट्ठे हो जाते थे, बुजुर्ग आपस में बतलाते थे, कोई दूर देश से आ जाता था, दूसरे गांव से, फिर वो कुशल मंगल पूछते थे एक दूसरे की। बाहर से आने वाला व्यक्ति कहता था कि भाई दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, उनका शादी विवाह कर दिया है, सब बाल बच्चेदार हैं और हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो चुके हैं और हमारा तो बेड़ा पार हो गया, ये अब भगवान कद्दे उठा ले, यानी कभी मृत्यु हो जा, हमारा तो जीवन सफल हो गया। अब परमात्मा के ज्ञान की इस रोशनी में हमें पता चला कि वो जीवन तो बर्बाद कर दिया, सफल नहीं, व्यर्थ कर दिया। जिसके भी भाग्य में लड़का है या लड़की है, ये पूर्व निर्धारित होता है, ये प्रारब्ध में पूर्व ही आपके अंकित होता है और वही आपके को मिलता है, चाहे लड़का होता है या लड़की। संपत्ति जो भी आपको मिलना है वही मिलेगी, जो भी आपका पद पोस्ट प्राप्त होना है वो भी वही मिलेगा। जब तक हम पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोगते हैं और जो साधना भविष्य की करते भी हैं, जैसे पहले हम करते थे कि तो हनुमान जी की पूजा, कहीं बाबा श्याम जी की पूजा या किसी और देवी देवता की पूजा, ये साधनाएं हमारी शास्त्र विरुद्ध थी। कहने का भाव यह है कि हमारा भविष्य का कोई भी पुण्य नहीं बन रहा था। प्रारब्ध अच्छा था क्योंकि हम समाज में क्या देखते हैं, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, छोटी सी कोई रोजगार हो जाए, फिर एक कोठी हो जाए, और जो भी कुछ होता था हम सोचते थे हमारे ये भगवान कर रहे हैं, जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित थे। और जो भी हमारा कोई शुभ होता था, जैसे पुत्र की प्राप्ति को बहुत शुभ मानते थे, तो अपने भगवान श्री कृष्ण जी पर ही हमारी बुद्धि की नीडर जाती थी, सुई जाती थी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी ने मौज कर दी, फिर हनुमान जी याद आ जाते, हनुमान जी ने मौज कर दी, फिर बाबा श्याम जी दिख जाता तो बाबा श्याम जी ने मौज कर दी, इन्होंने हमारे को पुत्र बख्श दिया। अब पता चला कि ये तो कोई भी परिवर्तन हमारे प्रारब्ध में कर ही नहीं सकते, वो तो कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ही कर सकता है और वो सतगुरु रूप में आता है तभी करता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सत्य भक्ति करता है। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख।